संतप्त मान शांत हूँ जिनके चौदह कलश हो गए थे और उसके बाद में दो कलश उस प्रकरण की समाप्ति के हो गए। अब वो कहते हैं ज्ञान मात्र आत्मा को सिद्ध कर दिया, फिर भी कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वो ज्ञान मात्र आत्मा अनंत शक्तियों से संपन्न है इस बात को बताते हैं। इसलिए ये प्रश्न है, देखिए पेज नंबर समय सार को निकालिए, पेज नंबर 591। ये देखो आप ननु 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 तीन बार ननु ननु है, देखा ननु माने न्याय शास्त्र में शंका होती है ना, मतलब तीन बार प्रश्नोत्तर करके ये बात को उन्होंने समझाया है। अपने सरलता के लिए हिंदी में ही पढ़ते हैं प्रश्न। अनेकांतात्मक होने पर भी यहां आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों और गुणों का निषेध समझा जाता है। तो ज्ञान के साथ में मात्र शब्द लगाया ना, तो मात्र शब्द को लोक में निषेधवाचक माना जाता है। इस अर्थ में जैसे कि इतने लोगों का यहां पर मात्र इतने लोगों का प्रवेश है, तो मात्र लगा दिया तो उसका मतलब बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो इसलिए इससे ऐसा लगता है कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर जो अनंत गुण हैं और उनकी अनंत अनंत निर्मल पर्याय हैं, उनका निषेध हो जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ में मात्र शब्द क्यों लगाया? कहते अनेक अंतात्मक होने पर भी, आत्मा जब अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, तो आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। लोक में जो सीधा सच्चा अर्थ है उसके हिसाब से यही समझाता है कि आत्मा में ज्ञान है, सुख नहीं है, वीर नहीं है, ये चीजें नहीं है। उत्तर, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहां आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। कहते कोई भी वस्तु को प्रसिद्ध करना हो, प्रसिद्ध का मतलब ज्ञान का ज्ञेय बनाना हो, जानना हो, प्रसिद्धि जैसे आता है आत्मख्याति, तो मैंने आत्मा की प्रसिद्धि, तो ये आत्मख्याति नाम की जो टीका है वो किसकी क्या है? ख्याति माने प्रसिद्धि तो दुनिया में नहीं, अपने ज्ञान में अपना भगवान आत्मा आना, उसका नाम आत्मख्याति है ना। मैंने जगत की प्रसिद्धि का मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि यहां हमें लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि, लक्षण है ना ज्ञान, ज्ञान लक्षण है, तो उसके द्वारा जो लक्ष्य माने भगवान आत्मा, आत्मा लक्ष्य है, जहां तक हमें पहुंचना है, अनंत गुणात्मक आत्मा को समझना है, वो ज्ञान के माध्यम से समझना है। तो ज्ञान है लक्षण और आत्मा है लक्ष्य। ये थोड़ा बहुत न्याय जीव का पढ़ी होगी जिन विद्यार्थियों ने, लगभग तो पहले ही साल पढ़ा दी जाती है ना, तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो जैन सिद्धांत प्रवेश का तो पढ़ी ही होगी, उसमें भी ये लक्षणों की परिभाषा तो आती है ना, अतिव्याप्ति अव्याप्ति से रहे जो लक्ष्य लक्षण होते हैं। तो वो कहते हैं ज्ञान गुण एक गुण है और ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं, तो और गुणों को लक्षण क्यों नहीं बनाया? सुख गुण को लक्षण बना देते, और अनंत जो गुण हैं उनको लक्षण बनाया जा सकता था, तो वो कहते हैं कि नहीं बनाया जा सकता है, ज्ञान को ही लक्षण बनाया जा सकता है। यानी ये जब हम लक्षण बनाते हैं तो उस वक्त इस बात को नहीं देखा जाता है कि कौन चीज कितने ज्यादा महत्व की है। यद्यपि आत्मा में अनंत गुणों में ज्ञान गुण सबसे महिमावंत गुण है, फिर भी ना भी होता तो भी उसे लक्षण बनाया जा सकता था। जैसे गाय का लक्षण जो उसके गले में झाला लटकती है उसको बनाया जाता है, जो किसी काम की नहीं है। गाय के भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि गाय को कहीं झाड़ी माड़ी में मुंह डाले तो वो उसमें कांटे छिद जाते हैं, उसे तकलीफ भी पैदा करते हैं। बकरी के गले में ऐसे दो वो लटकते रहते हैं, उनको लक्षण बनाया जाता है और उन्हें गलस्तन बोलते हैं, गले में लटकने वाले स्तन। लेकिन जो वास्तविक स्तन हैं जिनसे दूध आता है, जो उपयोगी हैं, उनको लक्षण नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनको बनाए तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति बहुत से दोष खड़े हो जाते हैं कि जो दो स्तन वाली हो वो बकरी है तो समय स्त्रियां बकरी हो जाएंगी, और भी कई जानवर ऐसे हैं जो दो स्तन वाले हैं तो बेजान बकरी हो जाएंगे। यानी उसमें बहुत दोष आते हैं, लेकिन वो अकेले बकरी के ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, इसलिए उनको परिभाषा बनाया जाता है। माने परिभाषा बनाने में ये नहीं देखा जाता है कि ये कितना उपयोगी के अनुपयोगी है, ये देखा जाता है कि ये उसकी पहचान का चिन्ह बन सकता है कि नहीं, ये उसके पहचान का चिन्ह बन सकता है कि नहीं। अपन अपने घर का एड्रेस किसी को बताते हैं ना, तो ऐसी चीज बताते हैं कि जो प्रसिद्ध हो जगत के सामने, कैसा आप जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग से तो ये गांधी जी का पुतला लगा है बहुत बड़ा, अब वो प्रसिद्ध है। अब वहां से आप से सीधे दाएं हाथ को मुड़ जाना, बोलते ना, तो वहां पर एक मंदिर दिखाई देगा तो टूटा स्मारक भवन है, तो अब वो गांधी जी की मूर्ति से क्या लेना देना है। अब हमारे यहां इतनी बढ़िया बढ़िया 2500 मूर्तियां हैं, तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों की हैं, तो उनको तो तुमने बताया नहीं और गांधी जी की मूर्ति बताई, अब हम कह सकते हैं ना कि हमारे यहां कोई मूर्तियों की कमी है और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की कमी मूर्तियां हैं, तो इनको तो तुमने लक्षण नहीं बनाया और गांधी जी की मूर्ति को लक्षण बनाया, कह सकता है ना कोई। तो कहते भैया उस यात्री को जो यहां आ रहा है वो वहां से यहां किस तरह जल्दी पहुंच जाए, ऐसा पहचाना पड़ता है कि वो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से आ रहा है तो उस जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर गांधी जी की मूर्ति ऐसी है कि दूर से दिखाई देती है और वहां चार तरफ रोड है, तो दाई की तरफ आएगा तो गांधी नगर रोड पे आ जाएगा, फिर दाई की तरफ देखेगा तो टोडमल स्मारक भवन दिखाई दे जाएगा। तो कहते हो ज्ञान लक्षण जो बनाया है वो आत्मा को सिद्ध करने में प्रसिद्ध कर, सिद्ध करने माने प्रसिद्ध करने में। देखो वस्तु तो सिद्ध ही होती है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी की सिद्धि तुमने की वो तो थोड़ा थोड़ा याद होगा ना, तो वो बात तो सिद्ध ही है, फिर भी आपको वो सिद्ध करना है कि ये कैसे बनी, इसमें अण संधि हो गई, इसमें फला सूत्र लगा तो उससे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आपको अपने ज्ञान को बताना है। वो वस्तु सिद्ध नहीं है और हमें सिद्ध करना है ये बात नहीं है, लेकिन हमें अपने ज्ञान में समझना है और हमें अपने शिष्य को समझाना है, उसको ही सिद्ध करना कहते हैं, और फिर उसको ही अधिकतम लोगों तक पहुंचाना हो तो प्रसिद्ध कहना कहते हैं। तो यहां कहते हैं देखो अनेकांतात्मक होने पर भी आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों और गुणों का निषेध पाया जाता है। तो लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए हमें तो आत्मा समझना है, आत्मा को समझाना है, लेकिन वो आत्मा का लक्षण ज्ञान है तो उसके माध्यम से समझाना है। इसलिए पहले हमें ज्ञान को समझाना है, क्योंकि हम उस लक्षण को ही नहीं पहचानेंगे कि गांधी जी की मूर्ति है, कौन गांधी है, क्या गांधी है, तुमने जानते महात्मा गांधी कहां के, कौन सा महात्मा, फिर अपन को बताना पड़ता है। इसे छोड़ो भैया, एक एक बहुत बड़ा चौराहा आएगा, उस पर एक स्टेच्यू लगा होगा, उस पर एक बुड्ढा खड़ा होगा हाथ में लाठी लिए, क्यों क्या करे, अब वो महात्मा गांधी को ही नहीं जानता है तो आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे, तो इस चौराहे को समझाना हो तो आप क्या कहोगे फिर उसे। तो इसलिए कहते हैं पहले हमें ज्ञान का स्वरूप समझाना है और फिर ज्ञान के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाना है। इसलिए क्योंकि आत्मा को हमने ज्ञान मात्र कहा, क्योंकि वो भगवान आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है। अब पहचान लिया तो फिर उसमें जो कुछ है सो है ही, अनंत गुण है तो अनंत गुण है, ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न पुद्गलादि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मद्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। माने ज्ञान लक्षण को पहचानेंगे तो उससे जो हमें आत्मा को जानना है उस आत्मा को जानने में हमें सुविधा होगी। तो फिर प्रश्न करता है कि ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, हम ज्ञान को क्यों समझें, ज्ञान तो लक्षण है ना, हमारा लक्ष्य तो नहीं है, हमारा लक्ष्य तो वो भगवान आत्मा है ना, तो सीधा पास भगवान आत्मा ही समझाओ ना, हमें ज्ञान खान क्यों समझाते हो। वो कहते लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करते हो, तुम तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करो ना, ठीक है ना, ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है। क्योंकि हमें तो असली तो भगवान आत्मा को जानना है, क्योंकि हमारा आत्मा का कल्याण उस आत्मा के होगा। मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य, लक्ष्य भूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। वो तुम्हें उलझाओ मत दुनिया में, हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम ज्ञान को समझाने लगते हो, हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम कहते भगवान एक महावीर भगवान थे, अब तुम भगवान महावीर हमें क्या लेना देना है। अरे भाई सुनो तो कि उनका समूषण आया था, उन समूषण में ये बताया था कि केवल ज्ञानी थे, तो झंझट में हमें नहीं डालो, हमें तो आत्मा समझा दो। अरे उनने आत्मा समझाया है वो कहाँ है कैसा है उसके वो बातें नहीं तो बतानी पड़ेंगी ना। प्रश्न ज्ञान ये तो हो गया ना प्रश्न, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। अब जैसे उन्होंने कहा था अश्विनी गाथा में प्रशंसार की कि तुम अरहंत भगवान के द्रवगुण पर आए जानो और फिर आत्मा के द्रवगुण पर आए जानना, काम तो आत्मा के द्रवगुण पर आए जानने से होगा अरहंत भगवान के नहीं, लेकिन अरहंत भगवान से जानने से फिर आत्मा के जानने में सुविधा रहेगी। अभी देखो लोक में ज्ञान का प्रचार का स्वरूप क्या है कि एक डॉक्टर अपने शिष्य को जो डॉक्टरी में पढ़ रहे हैं उन्हें शरीर विज्ञान सिखाते हैं, यद्यपि वे लोग उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका हिंदी अनुवाद में जीव विज्ञान लिखा होगा, लेकिन जब उसकी पढ़ाई देखते हैं तो जीव की तो कहीं बात ही नहीं आती है, पूरे शरीर ही शरीर की बात आती है, इतनी नसें इतने आते हैं उनमें ये होता है ये होता है, ये विटामिन्स होते मिनरल्स होते खून होते मांस हड्डी, बात उन्हीं उन्हीं की आती है। और फिर कोई डॉक्टर बनते हैं तो हड्डी के डॉक्टर नसों के डॉक्टर इसके डॉक्टर अलग अलग बनते हैं ना, मतलब पूरी 5 साल 10 साल जो भी पढ़ाई होती है वो शरीर ही शरीर की पढ़ाती है, तो सीधा अर्थ उसका शरीर विज्ञान नहीं रखना चाहिए था, उसको जीव विज्ञान कहां कहते हैं। लेकिन क्या जो ना जीव विज्ञान, अपने झले ही जीव विज्ञान कहें, लेकिन समझ लेना कि वो शरीर ही उनको समझाना है और वे उसे ही जीव कहते हैं। कितने कितने प्रसिद्ध बात है देखो, तो कहते हैं अब हम उसे वो जीव कहेंगे और हम नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वैसे से डॉक्टर को डॉक्टर ही पढ़ाने के लिए, शरीर का एक एक अंदर की बात समझाने के लिए पहले किताबों में लिख करके और उसमें से पढ़वाया जाता है, फिर वाणी से समझाया जाता है, फिर पत्थर की मिट्टी की ऐसी आकार बना करके और उसके अंदर बताया जाता है, फिर आजकल वो कांच का बनाकर उसके अंदर के सब ये हार्ट है ये है वो सब बताया जाता है, फिर मुर्दे पर बताया जाता है चीर चीर फाड़ फाड़ करके, है ना, और फिर अंत में जाकर के जो जिस चीज का इलाज करना है वो तो सबसे अंत में आता है उसका नंबर। ये सीखने में कितनी चीजें सीखता आता है, वो कागज पे नक्शा बना है फिर उसमें समझता है, फिर वो बने हैं जी अलग अलग तरह के यंत्र उनके माध्यम से समझता है, अंत में जब वो समझता है तो वो कहता है कि हम किसी का ऑपरेशन करें तो तुम आ जाओ और दो चार स्टूडेंट वहां खड़े खड़े चुपचाप देख लो, तुमको ऐसा कोई आदमी चीनने फाड़ने को नहीं दिया जा सकता है, मुर्दा तो दिया जा सकता है। तो अब उसे इंतजार करना पड़ेगा उस बीमारी का आवे, ऑपरेशन हो गए तो मेडिकल कॉलेज भी वहीं हो सकता है जहां साथ में अस्पताल हो और रोजाना 10-20 ऑपरेशन होते हों, वहां से इतने मरीज आते हों कि उन विद्यार्थियों को वो चीजें साथ साथ दिखाई जा सकें। तो एक एक विद्यार्थी जो डॉक्टर बनते हैं तो 2-4-5 ऑपरेशन देख पाते हैं होंगे, क्योंकि एक डॉक्टर है पढ़ाने वाला, एक गुरुजी हैं दिन में 2-3 ऑपरेशन करेंगे और हर साल 35 कम से कम विद्यार्थी हैं तो उन्हें कितना समय मिलेगा। जैसे तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो प्रवचन करने की तो तुम्हारा कम नंबर आता है, तो रोज ही ना विद्यार्थी का प्रवचन होता है, लेकिन तुम्हारा नंबर कितना आएगा। साल में 365 दिन तुम 365 दिन यहां रहते हो, कितने दिन रहते हो, और उनकी गिनती करोगे तो 175 दिन से ज्यादा नहीं होंगे, 175 विद्यार्थी हो एक दफे नंबर आएगा। आप समझे ना कितना सीधा सच्चा हिसाब है ना। मैं तो 175 दिन सिर्फ इसलिए कह दिया कि तुम विद्यार्थी 175 हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो ये नियम है कि 100 पीरियड लग जाए एक वर्ष में तो सर्वश्रेष्ठ माने जाती है। साल भर हम पढ़ाते हैं कोई सब्जेक्ट को तो उसके 100 पीरियड होना चाहिए, इतना वो मानते हैं। 365 दिन होते हैं, उनमें सिर्फ 100 दिन पढ़ाई हो तो इतने में तो गवर्नमेंट उसको 100% सफलता मानती है। जब हमने महाविद्यालय खोला था ना, ये विद्यार्थियों के ऐसा होता था बाद में प्रदूषण की शुद्धि हो गई, फिर पंच कजानक में चले गए, फिर यहां चले गए, तो पादमी जी बहुत चिंतित होते थे इस तरह तुम सब जगह भेज दोगे, छुट्टी कर दोगे, शिविर में छुट्टी कर दोगे तो पढ़ाई कब होगी। तो मैंने कई जगह उन्हें समझाया कि 365 दिन में 100 दिन की पढ़ाई हो जाए तो वो 100% सफल मानी जाती है, आप क्यों घबराते हो। और ये भी पढ़ाई का ही अंग है, ये प्रदूषण में जाएंगे, समाज के संपर्क में आएंगे, वहां बोलेंगे, यहां तो इन्हें साल में एक दफे मौका मिल जाएगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्यों। और वहां देखेंगे समापन कल्याणक जाएंगे तो सब क्रियाएं देखेंगे, विद्वानों को देखेंगे, समाज किस तरह का है वो सब चीज देखेंगे, ये सब स्टडी है। स्कूलों में और कॉलेजों में घुमाने ले जाते हैं ना, इतिहास भूगोल का ज्ञान कराने के लिए सब जगह घुमाने ले जाते हैं, तो ये भी पढ़ाई है, इसलिए आप इसमें से मत समझो। और आपके लड़के इसी में से टॉप निकलेंगे, इतने ये परिश्रम की छुट्टी रहेगी, शिविरों की रहेगी, پڑھیں گے دیکھیں گے کریں گے اور پھر بھی یونیورسٹی ٹاپ کریں گے. وہ کرتے تھے کیے ابھی بھی کرتے ہوں گے میرے خیال سے. جب ہم نے تو شروع کیا تھا تو پانچ سال دس سال تک لگاتار فرسٹ کلاس فرسٹ فرسٹ کلاس سیکنڈ تھرڈ آپ نہیں آتے تھے. میرے کہنے کا مرد مطلب ہے 100 دن 365 میں. اور پھر سے کیا کہتے ہیں کہ ودیارتھی کی اپستھتی 75% انواری ہے. اب گرو جی 100 دن پڑھائیں, گرو جی کو 100 دن آنا ضروری ہے, تو ودیارتھی کو 75 ہی دن ہوتے ہیں. اب 365 میں 75 دن یہی ہے نا. ابھی بھی تم اپنے کالج میں پڑھنے جاتے ہو اب 75 میں پھر پروکسی چلتی ہے, وہ گرو جی کرپا کر کے لگا دیتے ہیں نہیں پہنچے تم تو ابھی, اور ایک ودیارتھی جھوٹا پیچھے سے وہ بول دیتا ہے دوسرے کے نام پر. اور کتنے کتنے وہ پڑھتے ہیں تو ایسے کتنا صرف 15-25 دن ہی اصلی تم پڑھائی پڑھتے ہو نا, تو پھر تم ایسے ٹاپ کے ودوان بن جاتے ہو. کہ وستو کے سروپ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے. وہ بھکتی میں لوگ آئے اور پارنی جی پہنچ رہے ایک دو دن, یہاں تو اپنے تو 100 ودیارتھی ہیں, جب 100 ودیارتھی ہیں تو یہاں تو 50 ہی دکھ رہے. 50 دکھ رہے تو بہت دکھ رہے. اس کا سروپ ہی ایسا ہے. ابھی کتنی محنت کرتے ہیں وہ, انیکانت لگ رہا ہے, سونو لگ رہے ہیں, کبھی شانتی لگ رہے ہیں, پھر انا جی پیچھے پڑتے ہیں, پھر کبھی کبھی میں بھی بولتا ہوں. لیکن تم صبح کے پرچن میں ہوتا ہے نا 6:30 بجے کتنے لوگ آتے ہو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب تم وہ پاٹھ کرتے ہو نا گاتھاؤں کا, تب اکیلے پاٹھ کرنے والے ہی ہوتے ہیں. بہت ہمیں بدھو بناتے ہو کیونکہ ہم گھر میں سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں خطا کے دھول بھرا ہے تو بھیا گاتھا پاٹھ چل رہا ہے, گاتھا پاٹھ شروع ہو گیا, جلدی چلو جلدی چلو. ہم وہاں گھبرانے لگتے ہیں, یہاں ہال میں آگے دیکھتے ہیں تو آدھا ہال نہیں دیکھتا ہے. ہم آج 15 منٹ لیٹ آئے تب بھی آدھا ہال تھا. بند کر دیں پروچن, بولو کیا کریں. ارے ایسے ہی سروپ ہے ہمارے. وہاں ہم پڑھتے تھے تو راج بابت کے 4 ادھیائے پڑھائے اور باقی 6 ادھیائے پڑھائے نہیں, کورس میں ہی نہیں تھے کوئی پڑھے. تو کیوں ہو گیا راج بابت؟ ہم نے راج بابت کی اسٹائل سمجھ لی, کیسے اکلنگ دیو لکھتے ہیں, کیسے برتی ہے, کیسے بارتک ہیں, کیسے بھاشتے ہیں, وہ کسی سوتر کی کس طرح پریبھاشا کرتے ہیں, کیسی بحث کرتے ہیں, یہاں چا کیوں آ گیا, پیچھے کیوں نہیں آیا, اس سوتر کو پیچھے سے آگے کیوں رکھ دیا, وہ سب اسٹائل سمجھ لیں گے. اب باقی کے 6 ادھیائے خود ہی پڑھ لیں گے. ہوتا ہے ایسا. اور پھر وہ پورے راج بھارت کئی ودوان ہو جاتا ہے. برابر راج لکھے گا تو راج بھارت کو کوٹ کرے گا, بولے گا تو راج بھارت کو کوٹ کرے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورس میں بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اور اجناگم تو آغاز ہے. ایسی دنیا کی جو جیسے ہندی ساہتیہ ہے, سنسکرت ساہتیہ ہے, انگریزی ساہتیہ ہے, بہت اگاڑھ ہے. یہاں کورس میں تو 1-2 کتابیں پڑھائی جائیں گی. اپنیاس کتنے ہوں گے؟ کم سے کم 1 لاکھ اپنیاس ہوں گے. تمہیں ایک اپنیاس پڑھا دیا کورس میں, گودان پڑھا دیا, پریم چند کا کوئی پڑھا دیا, 1-2 کہانی پڑھا دی, اتنے میں تم اپنیاس کے ودوان ہو گئے, کہانی کے ودوان ہو گئے. اور ہو جاتے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں آتما میں انت گن ہیں, لیکن وہ گن کہ جو گن پرسدھ ہو, اور وہ جو اپرسدھ جو آتم تتو ہے, لکش ہمیشہ اپرسدھ ہوتا ہے اور ہیتو ہمیشہ پرسدھ ہوتا ہے. آپ نیا شاستر میں پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہے؟ اسدھم سادھیم, سادھ کی پریبھاشا ہی نہیں یہ ہے کہ اسے اسدھ ہونا چاہیے, اسدھ ہونا چاہیے مانے سامنے والے پکش کی اس کو اسدھ ہونا چاہیے, سمجھانے والے کو اسدھ نہیں. कि ये विशेषण शिष्यों की अपेक्षा है। तो वो कहते हैं कि यहां तो वो लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं है, तो पहले हम लक्षण को समझाएंगे, क्योंकि उसको समझाना सरल है, फिर हम लक्ष्य को समझाएंगे। जैसे अपन उदाहरण से सकते हैं, जैसे व्याप्य व्यापक भाव समझाना है तो कहते हैं कि वृक्षत्व ये व्यापक है, और जो नीम पना है आम्रपना है वो व्याप्य है। समझाते कि नहीं समझाते कि जो जो नीम है आम है वे सब वृक्ष तो हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं वो नीम हो कि आम हो ये जरूरी नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। तो हम इससे पे समझाएंगे, फिर आत्मा पे और ज्ञान गुण पे समझाते हैं कि ज्ञान गुण व्याप्य है आत्मा व्यापक है, ऐसे समझाते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। तो कहते ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है, लक्ष्यभूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। प्रश्न, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? तो कहते हैं ज्ञान तो सबसे बढ़िया चीज है। अब याद है ज्ञानम आत्मा स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति, क्यों ज्ञान स्वयं आत्मा है। अब इससे ज्ञान से बड़ी और कौन सी चीज है कि जैसे तुम पहले ज्ञान को समझाओगे और फिर उससे उसे समझाओगे? किसने समझ में आया ना? देखो, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? पहले ज्ञान की प्रसिद्धि करेंगे फिर उसे प्रसिद्ध करेंगे। तो ऐसा ज्ञान के अलावा और लक्ष्य है क्या? प्रश्न, कहते ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है। जवाब देते, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा अभिन्न ही हैं। तो इसी दृष्टि से उसने कहा था ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से एक ही हैं, दोनों का द्रव्य एक ही है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम है ना। यदि ऐसी बात है तो लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है? क्यों तो ज्ञान ही लक्ष्य है और ज्ञान ही लक्षण है, क्योंकि तो आत्मा को भी तो ज्ञान ही कहते हैं ना। तो कहते हैं कि फिर एक ही चीज है तो उसमें लक्ष्य लक्षण का भेद करने से क्या लाभ है? तो ये व्यायाम तुमने काय को करी, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, जब ये दो ही हैं तो एक ही चीज में दो पक्ष काय को खड़े किए जबरदस्ती है ना। अब उत्तर, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्ष्य और लक्षण का विभाग किया गया है। एक कोई प्रसिद्ध है और कोई प्रसाध्य मानत्व। ये प्रसिद्ध प्रसाध्य मानत्व क्या होता है जी? कोई चीज प्रसिद्ध है और किसी चीज को प्रसिद्ध करना है ना? कि प्रसिद्ध प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व, जिसे प्रसिद्ध करना है सिद्ध करना है उसे प्रसाध्य मान कहते हैं। प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण लक्ष्य लक्षण का विभाग किया गया है, क्योंकि प्रसिद्ध लक्षण होता है और प्रसाध्य मान साध्य होता है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के ससंवेदन से सिद्धपना है। प्रसिद्ध सिद्ध है ज्ञान, ज्ञान कैसे सिद्ध है? क्या सिद्धपना, वो मोक्ष वाला सिद्धपना नहीं है। कहते ज्ञान हमारे हरेक के अनुभव में आता है इसलिए वो प्रसिद्ध है। क्या बात है? तो कहते ज्ञान 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 कहां प्रसिद्ध है हमें? तो ये ज्ञान 24 घंटे तुम ये पढ़ रहे हो बोल रहे हो, ये ज्ञान के बिना कहां है? ये ज्ञान हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि वो अनुभव से हमें आ रहा है। वो कहते हैं तर्क युक्ति से हम क्या सिद्ध करें, ये तो अनुभव में आ रहा है ना ज्ञान। जैसे मैं आपको कहते हैं आपके अंदर जो राग होता है वो राग तो आपको स्पष्ट अनुभव में आता है, मुझे गुस्सा आया होता ना, मुझे लोभ हुआ, मुझे गुस्सा आया, लेकिन जिस कर्म के उदय से वो राग हुआ है वो आपके लिए अप्रसिद्ध है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। वो क्रोध मान माया लोभ दिखाई देते हैं, लेकिन वो जिस कर्म के उदय से वे हुए हैं वे दिखाई नहीं देते, और उनके होने से जो कर्म बन रहे हैं वे दिखाई नहीं देते। क्या अब सूक्ष्म क्या है, वे कर्म परमाणु सूक्ष्म है कि अपने राग द्वेष सूक्ष्म है? क्या ना कोई तो सूक्ष्म राग द्वेष सूक्ष्म होते हैं, कर्म परमाणु तो स्थूल है क्योंकि पुद्गल के बने हुए हैं, हजारों लाखों परमाणुओं के पिंड हैं, अतः अनंत गुणे परे जो अंत के तेजस और कर्मानु शरीर हैं उनमें अनंत अनंत परमाणु होते हैं, प्रसिद्ध है स्थूल है, हमें तो दिखाई नहीं देते। अब हम तो अभी गुस्सा आया उससे ये जाना क्रोध कर्म का उदय होगा, हम क्या जानते, हमें क्या पता क्रोध कर्म, हमने इसे अनुमान किया है, वो भी हमने शास्त्र में पढ़ रखा है कि जो क्रोध कर्म का उदय हो तो गुस्सा होता है, गोमर शास्त्र में पढ़ रखा है। तो हमारा ये अनुमान ज्ञान ये आगम पर आधारित है, मन शास्त्र में नहीं पढ़ा होता तो हमारा ये नहीं होता। तो आगमाश्रित बोलते हैं कि ये तुम्हारा हेतु आगमाश्रित है, तुम्हारे शास्त्र में पढ़ रखा है कि जब जब लोभ आदि क्रोध आदि कषाएं होती हैं तब ऐसे क्रोध नाम का कर्म लोभ नाम का कर्म उनका उदय होता है, तभी होती है, फिर उससे हमने अनुमान लगाया। तो ये तो सब अनुमान की बातें हो गई ना, हमें साक्षात तो कर्म तब भी दिखने वाला नहीं है, और राग साक्षात दिखने वाला है। गुस्सा आता है तो हमको स्वयं का गुस्सा ख्याल में आता कि नहीं आता है, अनुभव में आता है। अब वो कहते उससे जो कर्म बनेंगे वो भी शास्त्र में लिखे हैं कि ऐसे ऐसा गुस्सा भी ऐसे रागवादी भाव होते हैं तो उनसे ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं। अब वे दोनों निमित्त हैं, वो पुराने कर्म का उदय वो भी निमित्त है, और नए कर्म जो बनेंगे उनमें ये राग निमित्त है, ये निमित्त निमित्त एक संबंध है, इसलिए जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में लग रहा है, और आत्मा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता है ही नहीं कोई द्रव्य, इसलिए ये कुछ मतलब ही नहीं है। तो अभी तो हमें कर्म सूक्ष्म है कि राग सूक्ष्म है, मैंने द्रव्य कर्म सूक्ष्म है कि भाव कर्म सूक्ष्म है, तो आत्मा कैसे कहते ज्ञान, ज्ञान तो अनुभव में आता है, ज्ञान तो हमें स्पष्ट ख्याल में आता है ना, हर एक को हम इतना जानते हैं, अपना जानना अपने ख्याल में नहीं आता, आता है फिर ज्ञान प्रसिद्ध है और उससे जो प्रसाद्यमान भगवान आत्मा है उसकी सिद्धि की जाती है। कहाँ है अपन प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के ससंवेदन से सिद्धपना है, मन वो ससंवेदन ज्ञान से सिद्धि है उसकी। अब हमें ज्ञान ससंवेदन ज्ञान हो गया तो हमें आत्मा का अनुभव हो गया, सम्मदर्शन होना चाहिए। अरे भैया वो सम्मदर्शन की बात है जरा फिर अलग है, वो तो उसमें वो जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा तक तुम पहुंचोगे ना तो उसमें जो अपनापन पूर्व अपनेपन की अनुभूति होगी अनुभव ज्ञान में तब वो सम्मदर्शन होगा, और बाकी का अनुभव होता ही नहीं क्या? हमें कहते वो तो अनुभवी विद्वान है तो बाकी के कोई अनुभवी नहीं है। अरे कोई विषय कसाय के अनुभवी है, कोई इसके अनुभवी है, कोई इसी के अनुभवी है, कोई धंधे पानी के अनुभवी है, अनुभवी तो द्राक तरह के होते हैं। अभी अब वो कहते कोई किसी कोई अनुभवी नहीं है विद्वान, तो वो आत्मा के अनुभव का की अपेक्षा कह देते कोई अनुभवी नहीं है, वैसे तो अनुभवी सब है। जब मैं तुम्हारी उम्र से भी छोटी उम्र का था तो भीलवाड़ा प्रवचन करने गया था, तो भीलवाड़ा में प्रवचन करता था तो मैं वहां पर ये समझा रहा था छहडाला का कि भाई ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, मैंने ज्ञान की महिमा बता रहा था और साथ में कि धन संपत्ति कोई चीज नहीं है, तो वो छंद पड़ रहा था, धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, तो ज्ञान आपको रूप भयो अचल रहावे। तो कई 15-20 मिनट तक चलता रहा। तो एक सेठ थे, उनका नाम था गोरीलाल जी अजमेरा। अब उनके बाल बच्चे अभी सब हैं, वे तो मतलब मेरे दादाजी से भी बड़ी उम्र के थे, मैं तो था 17-18 वर्ष का, और वे होंगे 70-78 वर्ष के। तो उन्हें जिन पीढ़ियां उनकी वहीं बैठी थी, बेटे और बेटों के बेटे, यहां जो साहेबलाल जी अजमेरा थे ना, उनके भी चाचा थे, वे भी रिटायर हो गए साहेबलाल जी अजमेरा, और ऑफिसर थे बहुत बड़े वित्त विभाग में। तो वे बोले 8 घंटा हो गया पंडितों की प्रशंसा और सेठियों की को गालियां दे रहे। कहते पंडित बड़ी सवाल कि सेठियों को गालियां दे रहे और पंडितों की प्रशंसा कर रहे। मैंने कहा भैया मैंने किसी सेठिये को गाली नहीं दी, मैंने किसी पंडित की प्रशंसा नहीं की, ये चैडाला ने ज्ञान की प्रशंसा की है तो मैंने वो बताई है, और धन समाज ये किसी काम नहीं आते हैं ये इनकी निरर्थकता बताई है क्या, तो ये बताई है, इसमें सेठ और पंडित कहां से आ गए। वो कोई अपने यहां जैन समाज में सेठ और पंडित बटे बटाए हैं क्या, क्यों क्या सेठ पंडित नहीं हो सकते, वे विद्वान नहीं बन सकते, वे पढ़ लिख के विद्वान नहीं बन सकते, क्या पंडित भाग्य के उदय से सेठ नहीं बन सकते। और दोनों ही बातें हमने होती हुई देखी हैं, इसलिए ऐसा बंटवारा क्यों करते हो कि पंडितों और सेठों की बात है, लेकिन धन की और ज्ञान की तो बात है ही, ये बात तो पक्की है। जब मैं ऐसा समझाने लग गया तो उनको और ज्यादा अपमान अनुभव हुआ, तो कहने लगे दादा तुम जैसे हमारे पोते खेलते हैं, हम अनुभवी आदमी हैं, तुमने अभी दुनिया क्या देखी है, ऐसा बोलने लग गए। अपन ने तो उन्हें जवाब दिया कि सेठ जी अनुभव किसे कहते हैं पता आपको, अनुभव का बनारसी दास ने लिखा है क्या, ये तो अनुभव की महिमा है, अनुभव की परिभाषा नहीं है ये। हाँ ये दुआ मैंने उस वक्त उस सभा में सुनाया था, वो कौन था संत चौवन, मेरा 35 का जन्म है तो मैं 18-19 वर्ष का था, संत 53 चौवन था, चौवन समझते हैं ना 54, तब की घटना है जे परिषण के पर्व की। तो मैंने कहा अनुभव तो इसको बोलते हैं कि तुम्हें अनुभव होगा तो विषय कसार का होगा, एक ग्राहकों को लूटने का होगा, धंधे पानी का होगा, फिर क्या क्या है बोलो, क्या क्या अनुभव है तुम्हें, कैसे तुमने व्यापार धंधा किया है तो तुम उसके अनुभवी हो कह सकते हो, और क्या 5 दिन जिनके विषयों में लगे हो तो उसके अनुभवी है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा तो भैया कितना हो हल्ला मचा हुआ है, और सभा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं तो रोने लग गया। सब लोग करने के ये करने के वो सभा खत्म हो गई। क्या स्वरूप, मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि जगत का स्वरूप ऐसा ही है, कि वो अभी वो क्या समझते हैं, ये बच्चा हम पजामा पहने और एक हाथ वो बुशर वगैरह पहनते ना, जहां उस जमाने में जैसी होती थी वैसी वो पहने, अब वो पवित्र गए तो उनको तो ये वो छोक रहे बेसब पगड़ी मगड़ी रानी बढ़िया सीटिया एकदम झकाझक देखें, तो वे अपने को कितना महान समझे और ऐसे सामने वाले को नमन कितना तुच्छ समझे, ऐसी पोजीशन थी। देखो कहां था अपना कैसे प्रसाद्य मानत्व के कारण विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। अब ज्ञान क्या है प्रसिद्ध? हमें तो आज तक ज्ञान को देखा ही नहीं। अरे तुम 24 घंटा उसका अनुभव कर रहे हो, सारे काम उससे ही तो कर रहे हो, है ना? कोई चीज उठा रहे हो, रख रहे हो, एक खाना खाते हो तो एक चीज उठा के खा लेते हो और ये कंकड़ दिखाई दे देता है तो उसे फेंक देते हो, ये बिना ज्ञान के हो सकता? एक चिड़िया है, एक दाना होताती है तो उसे खा लेती है और कंकड़ आ जाए तो उसे फेंक देती है, वो भी जानती है ये अनाज है और ये कंकड़ है, ऐसा नहीं, शब्द नहीं जानती वो। लेकिन ये भक्ष है और ये अभक्ष है, वो ऐसा अभक्ष नहीं जानती होगी इसमें अनंत जीव है, लेकिन खाने योग्य नहीं है। ये खाने योग्य है, ये ज्ञान है उसे कि नहीं है? अपने अनुभव से ज्ञान का सिद्धपना है। सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। प्रति समय देखो, इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अपना भावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाद्यमान है। एक ज्ञान नाम के लक्षण से, ज्ञान नाम के गुण के लक्षण से वो अनंत गुण वाला जो भगवान आत्मा है वो प्रसाद्यमान मन सिद्ध करना साध्य है। इसलिए ज्ञान मात्र से अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान, क्रम रूप से प्रवर्तमान पर्याय और अक्रम रूप से प्रवर्तमान गुण, उस ज्ञान के साथ अभिनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। अब फिर इसमें प्रश्न आएगा, फिर कल करेंगे उसकी चर्चा।